लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे समस्त युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे मरियम के जीवन से आदर्श ग्रहण कर सुनने की क्षमता, समझ की गहराई, विश्वास उत्पन्न करने वाला साहस और सेवा के प्रति समर्पण का वरण कर पूर्णता का जीवन जिएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में जमीनी स्तर पर सेवारत वर्दीधारी और असैनिक शांति रक्षकों के योगदान को रेखांकित करने के इरादे से हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति रक्षक दिवस के लिए गुरुवार 27 मई को न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में विश्व के सर्वाधिक खतरनाक स्थानों पर यूएन के झंडे तले सेवाएं प्रदान करने वाले शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शांति रक्षकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। यह 4000 से अधिक उन सभी ब्लू हेलमेट शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने पिछले 7 दशकों में वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। यूएन प्रमुख ने पिछले वर्ष दायित्व के निर्वहन में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले 117 शांति रक्षकों को भी सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि ये सभी शांति रक्षक 42 देशों और विविध पृष्ठभूमियों से थे, लेकिन वे एक साझा लक्ष्य शांति के लिए एकजुट थे। उधर संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने मंगलवार को कहा कि मंकी पॉक्स का जो संक्रमण दुनिया भर के 16 देशों और स्वास्थ्य एजेंसी के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज किया गया है, उस पर काबू पाया जा सकता है और संक्रमण का कुल जोखिम बहुत कम है। मंकी पॉक्स कभी कभार ही सामने आने वाला एक विषाणु जनित रोग है जिसके मामले मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मगर हाल के दिनों में विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी ये संक्रमण उभरा है। सदस्य देशों से 22 मई को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 16 देशों में और यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के विभिन्न क्षेत्रों से मंकी पॉक्स के संक्रमण के 250 से ज्यादा पुष्ट और संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक यूरोप के कम 8 देशों बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन में इसके लगभग 80 मामलों का पता चल चुका है। आमतौर पर इस रोग में बुखार, दाने और लिम्फ नोड्स में सूजन जैसे लक्षण सामने आते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के 2 रूप हैं। 1958 में डेनमार्क की एक प्रयोगशाला में बंदरों में इस वायरस की खोज पुष्ट होने के बाद इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया था, परंतु किसी इंसान में इसके संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में चिन्हित किया गया। अलबत्ता इस तरह ये कुछ भ्रामक भी नजर आता है। ग्रीन हाउस गैस की सघनता, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, महासागरों का बढ़ता तापमान और अम्लीकरण जलवायु परिवर्तन के 4 प्रमुख संकेतकों में वर्ष 2021 के दौरान वृद्धि हुई है, जो कि चिंताजनक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि मानव गतिविधियों के कारण भूमि, महासागर और वातावरण में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, जिसके टिकाऊ विकास व पारिस्थितिकी तंत्रों पर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
बुधवार को जारी की गई रिपोर्ट बताती है कि पिछले 7 वर्षों ने अब तक के सर्वाधिक गर्म साल होने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। बदलती जलवायु का प्रत्यक्ष रूप दैनिक जीवन में चरम मौसम की घटनाओं में देखने को मिलता है, जिनकी वजह से सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और मानव जीवन व कल्याण को भी भारी नुकसान हुआ है। साथ ही खाद्य व जल सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं और विस्थापन बढ़ा है। वर्ष 2021 के आरंभ और अंत में लानीनिया प्रभाव के कारण शीतलन प्रभाव देखा गया, मगर बढ़ते तापमान के रुझान में बदलाव नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने जलवायु व्यवधान से निपटने में मानवता की विफलताओं पर क्षोभ व्यक्त करते हुए ध्यान दिलाया।
I will give you the bottom line. The global energy system is broken and bringing us ever closer to climate catastrophe.
UN महासचिव कह रहे थे कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था बिखर चुकी है और हमें जलवायु आपदा के और भी ज्यादा निकट पहुंचा रही है। हमें जीवाश्म ईंधन से होने वाला प्रदूषण बंद करना होगा और अक्षय ऊर्जा की तरफ अपना बदलाव तेज करना होगा, नहीं तो हम अपने एकमात्र घर पृथ्वी की तबाही को रोक नहीं सकेंगे। यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने कहा कि हालात की गंभीरता के मद्देनजर आसानी से लागू किए जा सकने वाले उपाय जल्द अपनाए जाने होंगे। पवन और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी एकदम तैयार हैं और अधिकांश मामलों में कोयला व अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सस्ते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने ध्यान दिलाया कि विश्व में अल्प पोषण से पीड़ित लगभग 60% आबादी हिंसा प्रभावित इलाकों में रहती है। यूएन प्रमुख ने हिंसक संघर्ष व खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर गुरुवार को सुरक्षा परिषद में आयोजित एक चर्चा को संबोधित किया। पिछले वर्ष भूख से पीड़ित 14 करोड़ लोगों में से अधिकांश केवल 10 देशों में थे। अफगानिस्तान, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, हेती, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया और यमन एवं अन्य देश। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन प्रमुख ने हिंसक संघर्ष और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर गुरुवार को सुरक्षा परिषद में आयोजित एक चर्चा को संबोधित किया। महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि कोई संदेह नहीं रहना चाहिए, जब ये परिषद हिंसक संघर्ष पर चर्चा करती है तो आप भूख पर चर्चा करते हैं, जब आप शांति रक्षा और राजनीतिक मिशन पर निर्णय लेते हैं तो आप भूख के बारे में फैसले करते हैं, और जब आप आम सहमति पर पहुंचने में विफल रहते हैं तो भूखे लोगों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन में युद्ध से वैश्विक स्तर पर भूख की चुनौती और विशाल हो गई है और ये भयावह है। उन्होंने हिंसक संघर्ष और भूख की घातक चुनौतियों से निपटने के लिए कार्रवाई का खाका पेश किया है, जिसके तहत राजनीतिक समाधानों में निवेश, नए टकरावों की रोकथाम और शांति निर्माण पर बल दिया गया है। इस बीच अफ्रीका के सहेल क्षेत्र में अगले 3 महीनों के दौरान 1,80,00,000 लोगों के समक्ष गंभीर खाद्य असुरक्षा का संकट है, जो कि वर्ष 2014 के बाद से सबसे बड़ी संख्या है। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने बुर्किना फासो, चाड, निजेर और माली में मानवीय राहत प्रयासों को तत्काल मजबूती देने के इरादे से $3 करोड़ की अतिरिक्त सहायता धनराशि जारी की है।
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल 3.1% की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है, जो कि इस वर्ष जनवरी में अनुमानित 4% से कम है। विश्व आर्थिक परिस्थिति व संभावना रिपोर्ट में मौजूदा हालात की एक बड़ी वजह यूक्रेन में युद्ध को बताया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग डेसा का विश्लेषण बताता है कि हिंसक संघर्ष ने कोविड-19 महामारी से पुनर्बहाली के रास्ते में चुनौतियां खड़ी की हैं। यूरोप में मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है, खाद्य पदार्थों व वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव बढ़ रहे हैं। यूएन महासचिव ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध अपने सभी आयामों में एक ऐसे संकट को हवा दे रहा है जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार तबाह हो रहे हैं, वित्तीय प्रणालियों में व्यवधान आ रहा है और विकासशील जगत के लिए चरम निर्बलताएं और भी गहरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि खुले बाजारों में भोजन व ऊर्जा का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके, निर्यात पाबंदियों को हटाकर अतिरिक्त व बचाए गए हिस्सों को जरूरतमंदों के लिए आवंटित करके और बाजार में उथल पुथल को शांत करने के लिए खाद्य कीमतों में आए उछाल से निपटकर। अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ समेत विकसित व विकासशील जगत की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक प्रगति में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया है। ऊर्जा व खाद्य कीमतों में आए उछाल ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विशेष रूप से प्रभावित किया है जो कि वस्तुओं का आयात करते हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
सुहानी बेला में प्रभु को दे धन्यवाद, रखा उसी ने हमको अपने साये में।
सुहानी बेला में प्रभु को दे धन्यवाद, रखा उसी ने हमको अपने साये में।
उसका प्यार अनोखा है,
उसका प्यार अनोखा है,
कितना प्यार वो करता है,
कितना प्यार वो करता है,
सुख दुख में साथी है वो, हरदम साथ रहता है।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को लातिनी अमेरिका के लिए गठित परम धर्म पीठी आयोग के सदस्यों को एक वीडियो संदेश भेजकर कहा है कि सिनोडैलिटी का अर्थ कलीसियाई संरचनाओं का पुनर्गठन नहीं है, अपितु यह कलीसियाई सहभागिता का एक मार्ग है जो ईश्वर के आत्मा की इच्छा के प्रति दिलों को उदार बनाता है। सिनोडैलिटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यह न तो लोकतांत्रिक ढंग से और न ही लोक लुभावन तरीके से कलीसियाई संरचनाओं की व्यवस्था करना है, बल्कि सिनोडैलिटी एक गतिशील आयाम है, पवित्र त्रित्व की एकता पर आधारित और स्थापित कलीसियाई सहभागिता का ऐतिहासिक आयाम है जो ईश प्रजा के विश्वास, प्रेरितिक सामूहिकता तथा संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ एकता के बल पर कलीसिया में हर प्रकार के सुधार को अनुप्राणित करती है। गौरतलब है कि परम धर्म पीठी आयोग के सदस्य सिनोडैलिटी विषय पर विचार विमर्श हेतु 24 से 27 मई तक रोम में एकत्र हुए हैं। परम धर्म पीठी दस्तावेज में सिनोडैलिटी को ख्रीस्त की देह और पवित्र आत्मा के कार्यों के संग सूत्रबद्ध ईश प्रजा की मिशनरी तीर्थ यात्रा निरूपित किया गया है। संदेश में संत पापा ने अपनी सोच को उदार रखने के महत्व पर बल दिया ताकि हम स्वयं को भ्रमित न करें कि हम सब कुछ जानते हैं या सभी उत्तर हमारे पास हैं। उन्होंने कहा, यह कल्पना करना कि हम सब कुछ जानते हैं सिनोडैलिटी के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए कि यह पवित्र आत्मा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता जो कि सिनोडैलिटी अथवा कलीसियाई सहभागिता के यथार्थ नायक हैं। संत पापा ने कहा कि पवित्र आत्मा का वरदान हम पर थोपा नहीं जाता अपितु कोमलता से हमारे स्नेह और हमारी स्वतंत्रता का आह्वान करता है ताकि हम एकता और एकात्मता प्राप्त करने में सक्षम बन सकें। संत पापा फ्रांसिस ने कहानी सुनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अटूट धागों से बुना वह वस्त्र है जो अतीत और वर्तमान सब कुछ और सभी को एक साथ जोड़ देती है। दुनिया की बुनाई शीर्षक से गुरुवार को वेटिकन पब्लिशिंग हाउस और सलानी प्रकाशन द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसमें 44 लेखकों, कलाकारों, धर्मशास्त्रियों और पत्रकारों ने कहानी सुनाने को मुक्ति के मार्ग के सदृश बताकर इस विषय पर चिंतन किया है। 240 पृष्ठों वाली इस पुस्तक का संपादन वेटिकन समाचार पत्र लुजरवातोरे रोमानो के निर्देशक अंद्रेया मोंदा ने किया है। दुनिया की बुनाई पुस्तक पर चिंतन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने अमरीकी लेखिका डोन्ना टार्ट के शब्दों का स्मरण किया जिन्होंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि हम जो कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें बारंबार दोहराते हैं और एक दूसरे को देते हैं, वे तंबू हैं जिनके नीचे हम सब एकत्र होते हैं। ये युद्ध में ले जाने के लिए बैनर हैं जिनके तहत हम संघर्ष करते हैं तथा जीवितों और मृतकों को जोड़ने के लिए अविनाशी रस्सियां हैं। संत पापा ने कहा कि सदियों और संस्कृतियों के अंतराल में इन विशाल भूखंडों का आपस में जुड़ना हमें एक दूसरे से और इतिहास से मजबूती से बांधता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा मार्गदर्शन करता है। इस दृष्टिकोण से संत पापा ने स्मरण दिलाया कि कहानी सुनाना अटूट डोरियों से बना एक कपड़ा बन जाता है जो सब कुछ और सभी को एक साथ जोड़ देता है और हमें विश्वास और आशा की भावनाओं के साथ भविष्य के प्रति उदार बनने की अनुमति देता है। संत पापा ने बताया कि कहानी सुनाना विश्व संप्रेषण दिवस 2020 के संदेश का केंद्र बिंदु था जिसने उक्त पुस्तक में प्रकाशित चिंतनों को प्रेरित किया है। पुस्तक के समापन खंड को लिखते समय संत पापा फ्रांसिस उम्मीद करते हैं कि उनके शब्द अंतिम नहीं होंगे क्योंकि टॉल्किंग के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के नायक फ्रोडो कहते हैं, कहानियां कभी खत्म नहीं होती और इसलिए भी क्योंकि पुस्तक की अवस्थिति उदारता और संवाद की भावना के प्रति अभिमुख है। उन्होंने कहा कि दुनिया की बुनाई शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक पाठकों के साथ संवाद करती तथा उनके दैनिक जीवन को रचनात्मक ढंग से प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि यह कहानी सुनाने ही नहीं अपितु कहानी सुनने के महत्व पर बल देती है। संत पापा ने कहा कि उक्त पुस्तक संवाद की एक गाथा है जो अंतिम पृष्ठ पर समाप्त नहीं होती और एक संवाद के रूप में अन्यों की सुनने पर दिल लगाती है। इसी कारण पुस्तक में मौन की एक मजबूत उपस्थिति महसूस की जा सकती है, शब्द और मौन एक साथ। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि स्वार्थगत रूप से अपने लिए संपत्ति इकट्ठा करना सच्ची दौलत नहीं है अपितु हमारे पास जो है उसे अन्यों में बांटना ही सच्ची समृद्धि है। शुक्रवार 27 मई को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, सच्ची संपत्ति हमारे पास मौजूद चीजों के गुणन में नहीं है अपितु जो कुछ हमारे पास है उसे अपने आसपास रहने वाले लोगों में उचित रूप से तथा समान रूप से बांटने में ही सच्ची दौलत निहित है। जिनीवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेंसियों के लिए परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक वैटिकन के वरिष्ठ महाधर्माध्यक्ष फोर्तुनातुस नवाचुकू ने इस तथ्य के प्रति विश्व के नेताओं का ध्यान आकर्षित कराया कि शांति और स्वास्थ्य लक्ष्यों में विभाजन को जगह नहीं दी जानी चाहिए। जिनीवा में 22 से 28 मई तक जन स्वास्थ्य विषय पर 75वीं आम सभा जारी है। शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति पर आयोजित सभा में उपस्थित विश्व प्रतिनिधियों को संबोधित कर महाधर्मादेश फोर्तुनातुस ने अखंड मानव विकास को शांति का नया नाम निरूपित किया। उन्होंने कहा कि घोर तनावों से घिरे वर्तमान विश्व के परिप्रेक्ष्य में वैटिकन का प्रतिनिधिमंडल गहन क्षोभ के साथ इस तथ्य को रेखांकित करना चाहता है कि वैश्विक और क्षेत्रीय घोषणाओं और समझौतों को ध्यान से व्यक्त करने के बावजूद युद्ध और संघर्ष का शोर तेज हो रहा है, महामारियां फैल रही हैं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय ह्रास के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, भूख और प्यास की त्रासदी बढ़ती जा रही है और एकजुटता साझा करने के बजाय व्यक्तिवाद पर आधारित एक आर्थिक मॉडल कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से एक व्यापक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है ताकि पूरी दुनिया की आबादी को आवश्यक चिकित्सा देखभाल और वैक्सीन तक समान पहुंच प्राप्त हो सके। साथ ही सरकारें और संबंधित निजी संस्थाएं आवश्यकता के अनुकूल जिम्मेदारी की भावना प्रदर्शित कर तथा हर स्तर पर एक समन्वित प्रक्रिया को विकसित कर एकजुटता की भावना में जरूरतमंद देशों की क्षमताओं को मजबूत करें। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।